दीवा और आर्यांश के पास ज्यादा समय नहीं बचा था जब वे एक दूसरे के साथ रह सकते थे। दीवा ये बचा हुआ समय आर्यांश के साथ अच्छे से बिताना चाहती थी, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता था जिससे आर्यांश उससे नाराज हो जाता था। कल शाम भी डिनर के बाद आर्यांश उसके तारे देखने की बात पर गुस्सा हो गया था। सुबह वो सपनों में समय का नाम बड़बड़ा रही थी। इससे भी आर्यांश गुस्से में उसे छोड़कर ऑफिस चला गया था। दीवा को लगा कि वो ब्रेकफास्ट टेबल पर इस बारे में आर्यांश से बात करेगी, लेकिन आर्यांश तो पहले ही ऑफिस जा चुका था। ये बात दीवा को बहुत तकलीफ दे रही थी और सुमन उसकी भावनाओं को समझ सकती थी। सुमन उसे समझाने की कोशिश भी कर रही थी। सुमन ने दीवा का हाथ पकड़कर सहलाते हुए कहा, वो इतना बिजी रहने के बाद भी आपकी बहुत परवाह करते हैं। दीवा ने अपना हाथ उनके हाथ से अलग किया और भीगी पलकों के साथ कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ सुमन माँ, मुझे ऐसी बातों से मत बहलाइए। सच जानती हूँ मैं, बस कुछ दिनों की बात है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं बस इतना चाहती थी कि बचे हुए दिन अच्छे से बीते, लेकिन मेरी गलती थी। बोलते हुए दीवा की आवाज़ भारी होने लगी थी। अपने आंसुओं को रोकने के लिए वो जल्दी जल्दी पलके झपकाने लगी। मैं आपको बहलाने के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, सच में उनके दिल में आपकी परवाह है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपको इस घर में रहने के लिए कभी नहीं लेकर आते, जबकि आज से पहले यहाँ कोई और औरत नहीं आई है, समन ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। दीवा को ऐसा लग रहा था कि सुमन आर्यांश के लिए काम करती है, इसलिए उसी का पक्ष ले रही है। वो इस विषय पर और बहस नहीं करना चाहती थी। दीवा ने गहरी सांस ली और टॉपिक बदलने के लिए कहा, छोड़िए, हम उसके बारे में और बात नहीं करते हैं। दीवा चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगी थी। दूसरी तरफ आर्यांश आज टाइम से पहले ही ऑफिस आ गया था। वो अपने केबिन की खिड़की के आगे खड़े होकर बाहर की भीड़ को देख रहा था। अचानक उसके केबिन का दरवाज़ा खुला। सार्थक अंदर आ रहा था। सिर्फ वही था जो बिना परमिशन के आर्यांश के केबिन में आ सकता था। सर, आज आप जल्दी कैसे आ गए? सार्थक ने थोड़ी हैरानी जताते हुए पूछा। आर्यांश उसकी तरफ पलटा और गंभीर आवाज में बोला, क्योंकि मुझे एक आदमी को ढूंढना है, उसका नाम समय है। कौन समय? सार्थक ने उलझन भरे स्वर में पूछा। वो भी सोच में पड़ गया था। अचानक से आर्यांश उसे अजीब काम दे देता था। वो किसी समय को कैसे ढूंढ सकता था जब तक उसे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता ना हो? इस दुनिया में बहुत से लोग थे जिनका नाम समय था। आर्यांश ने उसकी तरफ देखकर जवाब में कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए क्यों कहता? क्या वो इंसान मिस गोयनका से जुड़ा हुआ है? सार्थक ने गर्दन टेढ़ी करके पूछा। आर्यांश के चेहरे के भाव देखकर उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। सार्थक समझ गया था कि आज आर्यांश जल्दी ऑफिस क्यों आया था और इतना चिढ़ा हुआ क्यों लग रहा था। इस बात का दीवा को पता चलता तो वो शायद हंसते हंसते पागल हो जाती। आर्यांश उसे लेकर इतना परेशान हो गया था कि उसके सफाई देने के बाद भी वो समय को ढूंढने निकल पड़ा था। सार्थक के चेहरे पर स्माइल देखकर आर्यांश ने उस पर झल्लाते हुए कहा, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, जितना काम बोला है उतना करो। हाँ हाँ, तुरंत करता हूँ, सार्थक ने कहा और फिर बाहर चला गया। दूसरी तरफ दीवा हॉस्पिटल पहुंच गई थी। कल रात आर्यांश की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई थी। ऊपर से उसका मूड भी खराब था। वो अपने केबिन में बैठकर अपने सिर को हल्के हाथों से दबा रही थी। इस बीच डॉक्टर निश्चय उसके पास आए। उन्होंने दीवा को इस तरह खुद का सिर पकड़े हुए देखा तो बोले, डॉक्टर गोयनका, आप परेशान लग रही हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है, पर कल रात ठीक से सो नहीं पाई थी तो सर में दर्द हो रहा है, दीवा ने भारी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, दोपहर बाद आपकी एक सर्जरी है और उसके लिए आपका सही रहना जरूरी है, निश्चय मुस्कुराकर कहा, जिस पर दीवा भी हल्का सा मुस्कुरा दी थी। दीवा को वहाँ छोड़कर निश्चय जाने को हुआ, तभी वो वापस उसकी तरफ पलटा और बोला, मैं तो आपको बताना भूल गया था, कल रात आपकी माँ यहाँ पर आई थी, उन्हें किसी तरह की गलतफहमी हो गई है, उन्हें लगता है कि आप हॉस्पिटल में रह रही हैं। प्रार्थना के अस्पताल आने की बात सुनकर दीवा की नींद उड़ गई थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और परेशान स्वर में बोली, क्या माँ यहाँ पर आई थी और कब? कल रात 8 बजे के आसपास, आपको यहाँ नहीं देखा तो वो चली गई। मैंने पूछा भी था कि अगर कोई मैसेज है तो बता दे ताकि कल मैं आपके आने पर उनका मैसेज दे सकूं, लेकिन वो बिना कुछ बोले चली गई। निश्चय ने मासूमियत से उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। उसके बाद वो वहाँ से चला गया था। वहीं दीवा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने सिर पकड़ कर कहा, ये नहीं होना चाहिए था, माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल के बजाय आर्यांश के साथ रह रही हूँ। दीवा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसके पास प्रार्थना का कॉल आया। दीवा ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया और धीमी आवाज में कहा, हेलो माँ, कैसी हैं आप? दीवा, क्या तुम अभी इसी वक्त गोयनका इंडस्ट्रीज आ सकती हो? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, प्रार्थना ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। ठीक है, मैं आ रही हूँ, दीवा ने जवाब दिया और कॉल काट दिया। जब निश्चय ने दीवा को बताया था कि रात को प्रार्थना उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी और अब इस तरह प्रार्थना का उसे ऑफिस में बुलाने का मतलब दीवा समझ गई थी। पूरे रास्ते वो यही सोचती रही कि वो प्रार्थना को क्या जवाब देगी। कुछ ही देर में दीवा ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसके वहां पहुंचते ही प्रार्थना की सेक्रेटरी उसके पास आई और बोली, हेलो मिस गोयनका। वहां दीवा को सब जानते थे, वो बहुत कम ऑफिस आई थी, उसका वहां आना उन लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। एक पल के लिए उन सबको लगा कि शायद दीवा ऑफिस ज्वाइन करने वाली है, हेलो मिस शर्मा, दीवा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैडम ऑफिस में आप ही के आने का इंतजार कर रही हैं, मिस शर्मा ने जवाब दिया। दीवा ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और धीमे कदमों से चलते हुए प्रार्थना के ऑफिस पहुंची। उसका दल डर से घबरा रहा था। जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खोला, सामने प्रार्थना बैठी हुई थी। उसके चेहरे के भाव सख्त थे। जाओ दो कप कॉफी बनाकर ले आओ, प्रार्थना ने उसे देखते ही कहा। दीवा तुरंत पैंट्री में चली गई। वो कॉफी के साथ वापस लौटी तब प्रार्थना अपनी चेयर के बजाय सोफे पर बैठी थी। उसने दीवा को अपने पास बैठने का इशारा किया। दीवा ने प्रार्थना को कॉफी दी और फिर उसके पास जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही प्रार्थना ने धीमी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या चल रहा है इन दिनों? अच्छा ही जा रहा है, दीवा ने नजरें चुराते हुए कहा। वो प्रार्थना के चेहरे तक को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। प्रार्थना से बेहतर उसे कौन समझ सकता था। दीवा जब भी झूठ बोलती थी तब वो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाती थी। प्रार्थना ने कॉफी का एक घूंट पिया और फिर दीवा की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, तुम जानती हो दीवा, तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली हो। जब भी झूठ बोलती हो सामने वाले से नजर नहीं मिला पाती हो। डर के मारे दीवा ने अपना थूक निगला और फिर प्रार्थना की तरफ देखकर कहा, माँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा तो तुम झूठ नहीं बोल रही हो? कल रात तुम्हारे बारे में पूछने के लिए मैं हॉस्पिटल गई थी। वहां से मुझे तुम्हारे कलीग से पता चला कि तुम इन दिनों अस्पताल में नहीं रह रही हो, जबकि तुमने हमें यही बताया था कि तुम्हारे काम के चलते तुम्हें 2 महीने के लिए अस्पताल में रहना होगा, प्रार्थना ने उसे घूर कर देखते हुए कहा।
हाँ वो भी झूठ नहीं बोल रही और मैं भी नहीं बोल रही। मैंने हॉस्पिटल में रहने का सोचा था लेकिन वहाँ मुझे कम्फर्टेबल नहीं लगा, तो हॉस्पिटल के साथ ही मेरी एक कलीग डॉक्टर रहती है, उसने बोला कि हम रेंट हाफ हाफ कर लेंगे, तो मैं उसके साथ उसके फ्लैट पर रहती हूँ, दीवा ने घबराते हुए कहा। घबराहट के मारे वो अपनी ड्रेस का कोना पकड़कर उसे इधर उधर हिला रही थी। प्रार्थना ने उसकी तरफ सार्केस्टिकली मुस्कुराकर देखा और भौहें उठाकर पूछा, अच्छा तो तुम अपनी कलीग डॉक्टर के साथ रहने लगी हो, चलो मुझे बताओ वो मेल है या फीमेल? प्रार्थना के सवाल इतने सख्त थे कि दीवा का झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था। वो हड़बड़ाते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी प्रार्थना ने आगे पूछा, इसे जाने दो, मुझे ये बताओ कि कल रात तुम्हारी डेट कैसी रही? मुझे पता चला कि वहां पर एक लड़का आया था जिसने तुम्हें भाभी कहकर बुलाया था। कोई भी अनजान लड़का आकर तुम्हें ऐसे ही भाभी नहीं कहेगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि किसकी पत्नी हो तुम जो उसका भाई तुम्हें भाभी बुला रहा था? दीवा का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया था। वो सफाई में कुछ बोल नहीं पा रही थी तो वहीं प्रार्थना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी। जब वो पकड़ी जाती थी और जवाब नहीं दे पाती थी तो इसी तरह उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। अब चुप क्यों बैठी हो, बताओ मुझे क्या कर रही हो तुम दोनों, प्रार्थना गुस्से में चिल्लाकर बोली। वहां का माहौल काफी गंभीर हो गया था। दीवा ने अपना सिर झुका लिया था। उसने मन ही मन सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो सच नहीं बताएगी। वैसे भी उसके और आर्यांश के कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ही दिन बाकी थे। दीवा ने अपना चेहरा ऊपर किया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं माँ। अभी भी दीवा सच नहीं बता रही थी। प्रार्थना ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसकर कई गहरी सांसें लेकर कहा, ठीक है फिर मुझे बताओ वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें आकर भाभी कहा? मेरा यकीन कीजिए मैं उस लड़के को जानती तक नहीं थी, उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी और उसने मुझे भाभी बुला दिया, दीवा ने खुद को मजबूत करके कहा। इस बार वो सच कह रही थी, वो सच में उस लड़के को नहीं जानती थी, इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं। प्रार्थना का गुस्सा अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने दीवा के कंधों को दोनों हाथों से पकड़ा और चीखते हुए बोली, मुझे सच बताओ दीवा तुम आजकल किसके साथ रह रही हो? मैं अपने कलीग के साथ, दीवा अभी भी जिद पर अड़ी थी और वही जवाब दे रही थी। उसकी बात पूरी होने से पहले प्रार्थना ने उस पर चिल्लाकर बोली, तुम जानती हो तुम हमारी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो, एक तो गलती कर रही हो ऊपर से मुंह पर झूठ बोल रही हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया, दीवा अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही थी तभी प्रार्थना ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाया। दीवा जो इन दिनों कुछ ज्यादा ही इमोशनल अपडाउन से गुजर रही थी उसके लिए ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। प्रार्थना ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था और आज आर्यांश के चलते उसकी माँ ने पहली बार उसे थप्पड़ लगाया था। उसकी आंखें भरने लगी थीं और वो लाल आंखों से भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी।